एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब की दुनिया में जो थोड़ी जटिल तो है पर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में ना हमारी सोच को बिल्कुल हिला कर रख देती है।
अच्छा, कौन सी किताब है ये?
ये है हैरोल्ड ब्लूम की द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अ थ्योरी ऑफ पोएट्री।
हाँ, द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। और देखिए, नाम सुन के ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ कवियों के लिए है या जो बहुत साहित्य पढ़ते हैं उन्हीं के लिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
असल में ये किताब तो हर उस इंसान के लिए काम की है जो कभी भी ये सोचता है कि भाई मुझसे पहले इतने बड़े लोग इतना कुछ कर गए हैं, अब मैं नया क्या कर सकता हूँ, है ना। ये मौलिकता, अपनी पहचान बनाने का जो संघर्ष है, उसकी कहानी है ये।
बिल्कुल। और ये सवाल उठाती है कि क्या सच में कुछ भी पूरी तरह से नया, मतलब एकदम ओरिजिनल बनाना मुमकिन है, या हम सब बस जाने अनजाने अपने से पहले जो दिग्गज हुए हैं उनकी छाया में ही जी रहे हैं।
ये जो प्रभाव की चिंता है, मतलब दूसरों के असर का डर, ये आखिर है क्या चीज? क्या ये हमें रोकती है या फिर कुछ नया करने के लिए उकसाती है?
हाँ, यही सवाल है। आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे।
तो पहले ये जान लें कि इस विचार के पीछे कौन है।
हाँ बिल्कुल, हैरोल्ड ब्लूम। ये 20वीं सदी के अमेरिका के मतलब बहुत बड़े साहित्यिक आलोचकों में गिने जाते थे। येल यूनिवर्सिटी में इन्होंने दशकों तक पढ़ाया। पश्चिमी साहित्य और खासकर कविता, उस पर इनकी पकड़ तो जबरदस्त थी।
हाँ, उनका ज्ञान तो मतलब कमाल का था, विश्वकोश जैसा।
लेकिन उनकी खासियत सिर्फ ये जानना भर नहीं थी, साहित्य को देखने का उनका नजरिया बहुत अलग था।
कैसे, क्या अलग था?
युद्ध का मैदान थी, जहां कवि अपने पुरखों से, अपने साहित्यिक पिताओं से एक तरह से जूझ रहा होता है।
अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब कविता लिखना सिर्फ कला नहीं, ये एक दिमागी कश्मकश भी है।
हाँ बिल्कुल। ब्लूम ने इसके लिए फ्रॉयड के विचारों का भी इस्तेमाल किया, खासकर वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाला आइडिया।
ओडिपस कॉम्प्लेक्स?
हाँ, जैसे एक बेटा अपने पिता से प्यार भी करता है पर कहीं ना कहीं मन में उससे आगे निकलने की एक होड़ भी रखता है, है ना। वैसे ही वो मानते थे कि नया कवि अपने प्रेरणा स्रोत कवि के लिए सम्मान भी महसूस करता है और एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी। और ब्लूम का मानना था कि महान बनने के लिए इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई से गुजरना ही पड़ता है। शायद उन्होंने खुद भी ये चीज महसूस की हो।
अच्छा, तो चलिए अब किताब के बिल्कुल दिल पर आते हैं। ये प्रभाव की चिंता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं ब्लूम इसके जरिए?
देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि साहित्यिक परंपरा, मतलब जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, वो एक शांत नदी जैसी है। ज्ञान पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को आराम से मिलता जाता है।
हाँ, गुरु सिखाते हैं, शिष्य सीखते हैं।
राइट। पर ब्लूम कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, खासकर उन कवियों के लिए जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिन्हें वो सशक्त कवि या स्ट्रॉन्ग पोएट्स कहते हैं।
सशक्त कवि, इनका क्या मतलब है?
मतलब वो कवि जो सिर्फ नकल नहीं करना चाहते, जो अपनी आवाज बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान। ब्लूम कहते हैं कि ऐसे कवियों के लिए परंपरा एक बोझ बन जाती है, एक चुनौती।
बोझ, चुनौती, कैसे?
उन्हें अपने महान पूर्वजों के इतने बड़े साय से बाहर निकलना होता है और ये प्रक्रिया बहुत तनाव वाली होती है, चिंता यानी एंग्जाइटी से भरी हुई। उन्हें लगता है कि भाई हमारे पुरखे तो सब कुछ पहले ही कह चुके हैं, हमारे लिए कुछ नया कहने की जगह ही कहाँ बची है।
हाँ, ये तो होता है, लगता है कि अब क्या नया करें। तो फिर मौलिकता, ओरिजिनलिटी आती कहाँ से है, अगर सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है?
हाँ, यहीं पर ब्लूम का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार आता है। वो कहते हैं कि सच्ची मौलिकता पूर्वजों की पूजा करने से नहीं आती, या उनकी हूबहू नकल करने से भी नहीं।
तो फिर?
ये आती है उन्हें जानबूझकर गलत पढ़ने से, मिसरीडिंग, या जिसे वो कहते हैं रचनात्मक रूप से गलत समझना, क्रिएटिव मिसप्रिजन।
गलत पढ़ना मतलब जानबूझकर किसी की बात को तोड़ मरोड़कर समझना, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है।
हाँ, सुनने में अजीब लगता है बिल्कुल, पर जरा सोचिए, अगर आप किसी दिग्गज को, किसी बड़े राइटर को पूरी तरह सही मान लेंगे तो आप उसके आगे कैसे जाएंगे?
बात तो सही है।
तो ब्लूम कहते हैं कि जो सशक्त कवि होता है ना, वो अपने पूर्वज के काम को लेता है और उसे इस तरह से पढ़ता है, या यूं कहें कि दोबारा लिखता है कि उसमें अपने लिए जगह बन जाए। वो मानो कहता है, हाँ आप महान थे पर आपने ये वाला पहलू छोड़ दिया, या आपकी बात का असली मतलब तो ये है जो मैं बता रहा हूँ।
अच्छा, तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है, अपने काव्य पिता को रास्ते से हटाने की कोशिश।
हाँ, आप कह सकते हैं ये अपने लिए स्पेस बनाने का तरीका है।
तो ये जो गलत पढ़ना है, यही वो तरीका है जिससे नए कवि अपने पूर्वजों के प्रभाव से निपटते हैं।
बिल्कुल, ब्लूम ने इसे और गहराई से समझने के लिए 6 मुख्य मनोवैज्ञानिक रणनीतियां बताई, जिन्हें वो संशोधनवादी अनुपात या रिविजनरी रेशियोज कहते हैं।
6 रणनीतियां।
हाँ, अब देखिए, ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं होती कि कवि बैठकर लिस्ट बनाता है। ये ज्यादातर अनजाने में होता है। कवि के अंदर जो संघर्ष चल रहा होता है ना, ये उसी का नतीजा है। अब हम सभी 6 की गहराई में तो शायद आज नहीं जा पाएंगे, वरना ये थोड़ा ज्यादा ही अकादमिक हो जाएगा।
हाँ, वो ठीक रहेगा। कुछ मुख्य रणनीतियों पर बात करते हैं ताकि समझ आ जाए कि ये होता कैसे है।
हाँ बिल्कुल। तो एक बहुत आम रणनीति है जिसे ब्लूम कहते हैं क्लिनेमन। इसका मोटा मोटा मतलब है झुकाव या रास्ते से थोड़ा हट जाना।
हट जाना
जैसे?
सोचिए, जैसे कोई सड़क सीधी जा रही है और आप जानबूझकर उससे थोड़ा सा कटकर एक नई पगडंडी बना लेते हैं।
अच्छा, मतलब आप पूरी तरह से पुरानी राह को नकार नहीं रहे हैं, बस उससे थोड़ा सा अलग हो रहे हैं।
बिल्कुल सही। नया कवि मानो ये कह रहा है, हाँ मेरे पूर्वज इस रास्ते पर यहां तक तो सही आए, लेकिन असल में उन्हें थोड़ा सा इधर मुड़ना चाहिए था। वो पूर्वज के काम को लेता है और उसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ले आता है।
ये कहने का एक तरीका है कि पूर्वज महान था पर पूरी तरह सही नहीं था, या शायद अधूरा था। ये रचनात्मक गलत पढ़ने का एक क्लासिक उदाहरण है। मिल्टन के असर से बचने के लिए बाद के कई कवियों ने ऐसा किया।
दिलचस्प ये हुई एक रणनीति। और कोई तरीका?
हाँ, एक और है टेसरा। ये नाम आया है एक टूटे हुए बर्तन या मोजेक के टुकड़े से।
अच्छा, टेसरा।
यहाँ नया कवि खुद को ऐसे पेश करता है जैसे वो अपने पूर्वज के अधूरे काम को पूरा कर रहा है।
पूरा कर रहा है कैसे?
वो कहता है, मेरे पूर्वज ने जो शुरू किया था ना, उसे सही मायने या उसका सही अंजाम तो मैं दे रहा हूँ। इसमें ऊपर से तो एक तरह की विनम्रता दिखती है।
हाँ, कि मैं तो बस पूरा कर रहा हूँ।
लेकिन असल में ये एक दावा है। ये कहना है कि पूर्वज अधूरा था और मैं उसे पूर्णता दे रहा हूँ।
वाह, मतलब विनम्रता के पर्दे के पीछे भी एक तरह की होड़ तो चली रही है।
हमेशा ब्लूम के हिसाब से तो ये पूरा खेल ही होड़ का है, प्रतिस्पर्धा का है। अच्छा, एक और रणनीति है जो सबसे शक्तिशाली और थोड़ी रहस्यमयी मानी जाती है, एपोफ्रिडीज।
एपोफ्रिडीज, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है मृतकों की वापसी, रिटर्न ऑफ द डेड।
अरे, ये क्या है?
यहाँ जो नया कवि है ना, वो इतना मौलिक और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी रचनाएं पढ़कर ऐसा लगने लगता है मानो उसके पूर्वज ने ही उसकी नकल की हो।
क्या बात कर रही हैं? ये कैसे हो सकता है? मतलब प्रभाव उल्टा बहने लगता है?
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे बाद वाले कवि ने ही अपने पूर्वज की शैली या उसके विचारों को जन्म दिया था। ये प्रभाव पर, इन्फ्लुएंस पर पूरी तरह से विजय पा लेने जैसा है। नया कवि इतना ताकतवर हो जाता है कि वो अतीत को ही बदलता हुआ नजर आने लगता है।
ये तो कमाल की बात है।
हाँ, पर ब्लूम कहते हैं कि ये मुकाम कुछ बहुत ही महान कवि ही हासिल कर पाते हैं। तो ये जो रणनीतियां है ना, ये दिखाती हैं कि प्रभाव से निपटना कितना जटिल और कितना गहरा मनोवैज्ञानिक काम है।
ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरी थ्योरी से, इस पूरी किताब से हम क्या मुख्य बातें, क्या मेन टेकअवेज निकाल सकते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सिर्फ हुनर या प्रेरणा का खेल नहीं है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है।
हाँ।
खासकर जब आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहां आपसे पहले बड़े बड़े लोग काम कर चुके हों, उनके असर से, उनके प्रभाव से आपको जूझना ही पड़ता है।
सही कहा।
और दूसरी बात शायद ये निकलती है कि सच्ची मौलिकता, ओरिजिनैलिटी, वो परंपरा को नकारने से नहीं आती, बल्कि उससे जोरदार तरीके से लड़ने से पैदा होती है।
बिल्कुल।
आपको अपने आदर्शों से ही टकराना पड़ता है, उन्हें, जैसा आपने कहा, गलत पढ़ना पड़ता है ताकि आप अपनी जगह बना सकें। ये जो विरोधाभास है, यही शायद रचनात्मकता का इंजन है।
बिल्कुल।
और तीसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि ये जो प्रभाव की चिंता है ना, दी एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ये कोई बुरी चीज नहीं है जिसे हमें दबाना चाहिए या जिससे डरना चाहिए।
अच्छा।
ब्लूम के अनुसार ये चिंता ही वो आग है, वो आग जो नए कवियों को या किसी भी फील्ड के क्रिएटर्स को कुछ नया और बड़ा करने के लिए धकेलती है। ये डर कि कहीं मैं सिर्फ नकलची बनकर ना रह जाऊं, यही डर आपको ज्यादा मौलिक बनने पर मजबूर करता है।
हाँ, ये बात मुझे भी बहुत महत्वपूर्ण लगी। हम अक्सर दबाव या चिंता को नेगेटिव मानते हैं ना, लेकिन यहाँ ये रचनात्मकता की एक जरूरी शर्त की तरह सामने आ रही है। जैसे जैसे शायद किसी बहुत कामयाब भाई या बहन के होते हुए अपनी पहचान बनाने का जो दबाव होता है वो हमें कुछ अलग करने को प्रेरित करता है। कैसा हो सकता है?
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और चौथी बात ये कि साहित्य के इतिहास या किसी भी कला या विचार का इतिहास वो कोई शांतिपूर्ण रिले रेस नहीं है।
हाँ, कि बैटन पास कर दिया बस।
हाँ, वैसा नहीं है, बल्कि वो एक लड़ाई का मैदान है। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से लड़कर जूझकर अपनी जगह बनाती है। ये संघर्ष, जिसे ब्लूम एगोन कहते हैं, यही प्रगति लाता है।
और आखिर में पांचवी बात, ये रचनात्मक गलत पठन का आइडिया, ये बहुत शक्तिशाली है।
हाँ,
मौलिक होने का मतलब शायद ये नहीं कि आप कुछ ऐसा सोचें जो पहले कभी किसी ने सोचा ही ना। आज की दुनिया में ये शायद मुमकिन भी नहीं, बल्कि ये है कि आप पहले से मौजूद विचारों को लें और उन्हें एक नए अपने नजरिए से देखें, उन्हें तोड़े मरोड़े और कुछ अपना बना लें।
हाँ, ये गलत पढ़ना सिर्फ समझने की गलती नहीं है, ये एक सक्रिय, एक एक्टिव रचनात्मक क्रिया है।
सही, ब्लूम की भाषा माना थोड़ी मुश्किल है, पर उनके कुछ वाक्य सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, काव्य प्रभाव हमेशा पिछले कवि के गलत पठन से आगे बढ़ता है। एक रचनात्मक सुधार का कार्य जो वास्तव में और आवश्यक रूप से एक गलत व्याख्या है।
बिल्कुल साफ है, मौलिकता आती है सुधार के नाम पर की गई तोड़ मरोड़ से, एक तरह की जानबूझकर की गई गलत व्याख्या से।
हाँ, और एक और विचार जो मुझे बहुत चौंकाता है, हर कविता एक मूल कविता की गलत व्याख्या है। कविता चिंता पर काबू पाना नहीं है, बल्कि वो चिंता ही है।
कमाल है ना? यानी कविता उस संघर्ष का नतीजा नहीं है, बल्कि वो संघर्ष का जीता जागता सबूत है, वो तनाव उसमें समाया हुआ है।
और ये भी कि मजबूत कवि एक दूसरे को गलत पढ़कर काव्य इतिहास बनाते हैं, ताकि वो अपने लिए कल्पनाशील जगह बना सकें।
ये सीधे सीधे बताता है कि प्रगति कैसे होती है, पुराने नक्शों को मिटाकर या उन्हें बदलकर ही नए रास्ते बनते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे सिद्धांत सिर्फ कवियों पर या लेखकों पर ही लागू होते हैं, या हम इन्हें अपनी जिंदगी में कहीं और भी देख सकते हैं?
नहीं नहीं मुझे तो लगता है ये हर जगह लागू होते हैं। जरा सोचिए कला, संगीत या फिल्म के बारे में।
हाँ,
कोई नया संगीतकार है, वो अपने पसंदीदा पुराने बैंड के असर से कैसे बाहर निकलता है? वो शायद उनके स्टाइल को लेता है और उसमें कुछ अपना थोड़ा अलग सा खिनामिन जोड़ देता है, या फिर वो उनके किसी अधूरे वादे को पूरा करने का दावा करता है।
ऐसुरा,
यही सब तो होता है।
हाँ, ये तो है। या फिर अकादमिक दुनिया में देख लीजिए, कोई छात्र है, वो अपने प्रोफेसर के विचारों से कैसे अलग सोच पाता है? उसे भी तो जो स्थापित ज्ञान है उसे चुनौती देनी पड़ती है, उसे नए सिरे से पढ़ना पड़ता है ना?
बिल्कुल। और व्यापार या टेक्नोलॉजी में सोचिए, कोई नया स्टार्टअप है, वो किसी बड़ी जमी जमाई कंपनी जैसे गूगल या अमेज़न, इनके दबदबे को कैसे चुनौती देता है?
ये इंटरेस्टिंग है।
वो अक्सर बाजार की किसी ऐसी जरूरत को पकड़ता है जिसे बड़े खिलाड़ी नजरअंदाज कर रहे होते हैं। शायद ये क्लिनामेन जैसा है, या फिर वो मौजूदा टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करता है कि वो बिल्कुल नई लगने लगती है। उन्हें भी मौजूदा स्थिति को गलत पढ़ना पड़ता है ताकि वो अपनी जगह बना सकें।
यहाँ तक कि हमारे अपने व्यक्तिगत रिश्तों में भी ये चीज दिखती है। हम अपने माता पिता या जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, उनके असर से अपनी पहचान कैसे बनाते हैं?
हाँ,
हम सिर्फ उनकी कार्बन कॉपी तो नहीं बन सकते, ना बनना चाहते हैं। हमें उनके दिए गए मॉडल को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है, उसमें कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है। ये भी तो एक तरह का रचनात्मक संघर्ष ही है।
बिल्कुल सही कहा। तो ये जो प्रभाव की चिंता है, ये सिर्फ कवियों की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर वो इंसान जो अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसे अपने से पहले वालों के असर से, उनके प्रभाव से जूझना ही पड़ता है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि मौलिकता, ओरिजिनलिटी, वो कहीं शून्य में हवा में से पैदा नहीं होती। ये हमेशा अतीत के साथ, गुजरे हुए कल के साथ एक गहरे और कभी कभी मुश्किल रिश्ते से ही जन्म लेती है। हमें अपने आदर्शों से, अपने पूर्वजों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे रचनात्मक तरीके से भिड़ने की, जूझने की जरूरत है।
और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये है कि ये जो चिंता है, ये जो दबाव है महान पूर्वजों का, ये असल में एक तोहफा भी हो सकता है। ये हमें आलस से जगाता है, हमें अपनी सीमाओं से आगे धकेलता है। शायद बिना इस संघर्ष के, बिना इस चिंता के, सच्ची महानता संभव ही नहीं है।
तो अगली बार जब कोई भी कुछ नया रचने बैठे, चाहे वो एक कविता हो या कोई पेंटिंग या कोई बिजनेस प्लान या बस अपनी जिंदगी जीने का एक नया तरीका, शायद ही सोचने लायक हो कि आप किसके प्रभाव में हैं और क्या आप उस प्रभाव को सिर्फ ढो रहे हैं या उससे रचनात्मक रूप से जूझ रहे हैं।
ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।